लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे क्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ले तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का निमंत्रण देता है। संत पापा फ्रांसिस की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। श्रोताओं, फ्रतेल्ले तुत्ती के 6वें अध्याय का शीर्षक समाज में वार्ता और मित्रता है। अपने पिछले प्रसारण के अंत में हमने कहा कि सच्ची सामाजिक वार्ता अपने में इस बात को सम्माहित करती है कि हम दूसरों के विचारों का सम्मान करें और उसे स्वीकारें कि उनमें वैध विश्वसनीयता और दूसरों के लिए चिंताएं शामिल हैं। उनकी पहचान और अनुभवों के आधार पर दूसरों के लिए कार्य करने की जरूरत है। जब लोग व्यक्तिगत रूप में या समुदाय के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करते, अपने मूल्यों और विश्वास की रक्षा करते और उन्हें अपने तर्कों के रूप में विकसित करते हैं, तो निश्चित रूप में यह समाज को लाभ प्रदान करता है। वास्तव में सच्ची वार्ता की स्थिति में हम दूसरों को समझने की अपनी योग्यता में बढ़ते हैं, खास रूप से दूसरे क्या कहते और क्या करते हैं। लोगों के साथ विचार विमर्श यदि अपने में सबों के लिए खुला रहता और अपने में सूचनाओं की हेरा फेरी या लुका छिपी नहीं होती, तो यह हमें सच्चाई को बेहतर रूप में समझने हेतु मदद करती है। श्रोताओं, आज की वैश्विक दुनिया में संचार माध्यमों के द्वारा हम एक दूसरे के निकट रहने का एहसास करते हैं, जहां हम मानव परिवार के रूप में एक तरह से एकता का अनुभव करते हैं, जो सबों के लिए और अधिक सम्मानजनक जिंदगी के प्रयास को सुनिश्चित करता और हमें गंभीर बनाता है। इस संदर्भ में संचार माध्यम हमें वृहद सहायता करते हैं, विशेषकर वर्तमान समय में जहां हम मानवीय संचार माध्यमों के नेटवर्क में अति विशेष प्रगति को देखते हैं। इंटरनेट खासकर हमारे लिए मिलन और एकता हेतु बहुत अधिक संभावनाएं उत्पन्न करता है। यह अपने में सचमुच अच्छा है। ईश्वर की ओर से मिला हुआ यह हमारे लिए एक उपहार है। हमें निरंतर यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वर्तमान समय के संचार माध्यम सही अर्थ में उदारता के संग दूसरों से मिलने, ईमानदारी से पूर्ण सच्चाई की खोज करने, वंचितों के निकट रहने और जन सामान्य की भलाई हेतु हमें दिशा निर्देशित करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के धर्माध्यक्ष गण हमें इस बात से अवगत कराते हैं, हम डिजिटल दुनिया को स्वीकार नहीं सकते हैं जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हों और लोगों को बदतर स्थिति की ओर ले जाते हैं। श्रोताओं, समाधान संपेक्षवाद नहीं है। सहिष्णुता की आड़ में संपेक्षवाद अंततः नैतिक मूल्यों को उनके हाथों में छोड़ देता है जो शक्तिशाली हैं और वे उन्हें अपनी इच्छा के अनुरूप परिभाषित करते हैं। हमारी अपनी इच्छाओं और तत्कालिक जरूरतों की पूर्ति के अलावा निष्पक्ष, सत्य या उचित सिद्धांतों की अनुपस्थिति में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि राजनीति प्रयास या नियमों को बल प्राप्त होगा। जब संस्कृति ही अपने में भ्रष्ट हो जाती और निष्पक्ष सच्चाई और वैश्विक सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता, तब कानूनों को केवल मनमाने ढंग से थोपने या बाधाओं से बचने के रूप में देखा जा सकता है। क्या सच्चाई के बारे में सोचना, उसकी खोज करना, जो जीवन को एक गहरा अर्थ प्रदान करती है, अपने में संभव है? इस विश्वास के बिना, जो अतीत से उत्पन्न हुई और महान प्रज्ञा को दिखलाती है कि मानव अपने में पवित्र और अपरिहार्य है, कानून का अर्थ क्या रह जाता है? समाज के भविष्य हेतु हमें चाहिए कि हम मानव सम्मान की सत्यता को स्वीकार करें और इस सच्चाई का अनुसरण करें। किसी का कत्ल अपने में गलती मात्र नहीं है, क्योंकि यह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य और दंडनीय है, लेकिन इसमें मानव के प्रति हम गहरी आस्था को पाते हैं। यह एक अविचारणीय सत्य है जिसे हम अपनी तर्क शक्ति से प्राप्त करते हैं, जिसे हमारा अंतःकरण स्वीकार करता है। एक समाज सत्य की खोज करने और उसका अनुपालन में महान और सम्मानीय है। श्रोताओं, हमें इस बात को जानने और विभिन्न रूपों में यह सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह सत्य का तोलमोल किया जाता, उसे विकृत किया जाता और जन सामान्य से गुप्त रखा जाता है। हम जिसे सच्चाई कहते हैं, वह घटनाओं और आंकड़ों की प्रस्तुति मात्र नहीं है जिसे हम दैनिक अखबारों में पाते हैं। यह मुख्य रूप से उन आधारभूत निर्णयों और नियमों की खोज है जो मानवीय जीवन को मजबूती प्रदान करती है। यह हमें इस बात को स्वीकारने की मांग करती है कि मानव का मस्तिष्क अपने में क्षणिक बातों और कुछ निश्चित सच्चाइयों से परे जा सकता है, जो नहीं बदलती है, जो अतीत में थी और जो अब भी कायम है। यह मानवीय स्वभाव को झांक कर देखता, तर्क के द्वारा वैश्विक मूल्यों को खोज निकालता है जो मानव स्वभाव पर आधारित हैं। क्या यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि जिन मौलिक अधिकारों को हम अभेद्य मानते हैं, उन्हें सत्ता में बैठे लोग उदासीन या भयभीत जनता की सहमति प्राप्त करने से वंचित कर देंगे? न ही विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक आम सहमति जो स्वयं हेरा फेरी के लिए समान रूप से खुली हो, उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त होगी। हमारे पास उस महान भलाई के पर्याप्त प्रमाण हैं, जिसके लिए हम सक्षम हैं। फिर भी हमें अपनी अंतर्निहित विनाशकारिता को भी स्वीकार करना होगा। क्या उदासीनता और हृदय विहीन व्यक्तिवाद जिसमें हम घिरे हैं हमारे सुस्तीपन का परिणाम नहीं है, जहां हम ऊंचे सामाजिक गुणों की प्राप्ति में अपने को पीछे पाते हैं, जो हमारी तात्कालिक जरूरतों से परे जाती है, जहां हम ऊंचे सामाजिक गुणों की प्राप्ति में अपने को पीछे पाते हैं? सापेक्षवाद हमेशा जोखिम लाती है, जहां कुछ कथित शक्तिशाली या चतुर व्यक्ति सत्य को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। फिर भी जब आंतरिक बुराई को रोकने वाले नैतिक मापदंडों की बात होती है, तो इस संदर्भ में हम किसी के लिए कोई विशेष अधिकार या अपवाद को नहीं पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दुनिया का मालिक है या धरती पर कोई गरीबों में से सबसे गरीब। नैतिकता की मांग में हम सब बिल्कुल बराबर हैं। श्रोताओं, वर्तमान में जो हो रहा है वह हमें विकृत और बंजर सोच की ओर अग्रसर करता है, जहां हम नैतिक और राजनीति में गिरावट को पाते हैं। अच्छाई और बुराई का अस्तित्व अपने में नहीं है, बल्कि हम आज लाभ और बोझों को भी पाते हैं। नैतिक तर्क की कमी के कारण कानून को हम न्याय की स्थापना हेतु मूलभूत आधार स्वरूप नहीं पाते, बल्कि यह प्रचलित धारणाओं को प्रतिबिंबित करने का साधन बन गया है। जब टूटना शुरू होता तो हम सतही सहमति के आधार पर सभी चीजों को समतल होता देखते हैं। अंत में इस भांति सबसे शक्तिशालियों के नियम ही हमारे बीच रह जाते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। खाद्य एवं कृषि संगठन सोमवार से जब अपना 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू कर रहा है, संत पापा फ्रांसिस ने एक संदेश भेजकर कहा है कि वर्तमान संकट के बाद किस तरह विश्व को पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन को अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु असहाय एवं जरूरतमंद भाइयों एवं बहनों की सेवा में परमधम पीठ और कैथोलिक कलीसिया के समर्थन का संकल्प दोहराया है। उन्होंने गरीब ग्रामीण खाद्य उत्पादकों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है, जो अक्सर कुपोषण एवं भुखमरी के शिकार होते हैं। संत पापा ने अपना यह संदेश सोमवार को जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री मिखाइल कुरकेका को भेजा, जो रोम के मुख्य कार्यालय में 14 से 18 जून तक फाओ के 42वें सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्चुअल सम्मेलन की विषय वस्तु है कृषि खाद्य प्रणाली बदलाव, रणनीति से कार्य तक। संगठन भुखमरी दूर करने एवं पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में अपना सहयोग देता है। संत पापा ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान यह कार्य विशेष महत्व रखता है, जब हमारे कई भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। पिछले साल ऐसे लोगों की संख्या विगत 5 सालों में सबसे अधिक थी, जबकि संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट एवं वर्तमान के स्वास्थ्य संकट के साथ भविष्य में और भी अधिक बदतर हो सकता है। संत पापा ने संदेश में कहा है कि महामारी के बाद की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए पारिवारिक कृषि एवं ग्रामीण समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने खेद प्रकट किया है कि जो खाद्य उपजाते हैं वे ही भोजन के अभाव का सबसे अधिक सामना करते हैं। विश्व के गरीबों में से 3/4 लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तथा अपने जीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर करते हैं। संत पापा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों की सराहना की, जिसमें अलग अलग देश स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए खाद्य स्वायत्तता प्राप्त करते हैं। जब विश्व महामारी के बाद पुनः आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, संत पापा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उदासीनता एवं जुदा करने की मनोभावना के विपरीत देखभाल की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। जबकि कुछ लोग तनाव, टकराव और झूठ बोलते हैं, दूसरी ओर हम धैर्यपूर्वक और निर्णयात्मक रूप से शांति की संस्कृति का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। संत पापा ने कहा कि केवल कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना पर्याप्त नहीं है, ठोस कार्यों की जरूरत है जो उनके संदर्भ बिंदु के रूप में मानव परिवार से संबंधित हैं और बंधुत्व को बढ़ावा देते हैं। 15 जून को संयुक्त राष्ट्र ने उन वयोवृद्धों के लिए समर्पित किया है जिन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। संत पापा फ्रांसिस ने 15 जून के ट्वीट संदेश में बुजुर्गों के प्रति अपनी एकात्मकता व्यक्त करते हुए कहा, जहां बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं है वहां युवाओं का भी कोई भविष्य नहीं है। संत पापा फ्रांसिस ने ग्लोबसेक ब्रातिस्लावा मंच के 16वें सम्मेलन को एक संदेश भेजा, जिसको 15 से 17 जून तक आयोजित किया गया है। सम्मेलन की विषय वस्तु है दुनिया को फिर से बेहतर बनाएं। संत पापा ने अपने वीडियो संदेश में सम्मेलन के प्रतिभागियों का अभिवादन करते हुए उनके मंच के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें वे महामारी के बाद हमारे विश्व के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं आपको कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, 3 शब्दों से प्रेरणा लेते हुए, देखना, जांच करना, कार्य करना। संत पापा ने कहा, अतीत की गंभीर एवं सच्ची व्याख्या जिसमें सृष्टिकर्ता पड़ोसी एवं सृष्टि के प्रति प्रणालीगत कमियों गलतियों और जिम्मेदारी की कमी को स्वीकारना शामिल है, मेरे लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सुधार के विचार को बढ़ाया जाए, न केवल उन चीजों का पुनः निर्माण करते हुए जो पहले थे, बल्कि कोरोना वायरस के पहले जो चीज सही तरीके से नहीं चल रहे थे उसमें भी सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि जो कोई गिरने के बाद उठना चाहे उससे अपने गिरने की स्थिति का सामना करना चाहिए और जिम्मेदारी के घटकों को पहचानना चाहिए। संत पापा के विचार से दुनिया उपलब्धियों की भूख पर आधारित सुरक्षा की भ्रमित भावना से ठगी गई है। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे आर्थिक और सामाजिक जीवन के मॉडल को देखता हूँ जो कई प्रकार की असमानताओं और स्वार्थी भावनाओं से चिन्हित है, जिसमें विश्व की कुल आबादी में से मुट्ठी भर लोग इसकी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, जो अक्सर लोगों एवं संसाधनों का शोषण करने से भी नहीं हिचकिचाते। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण की पर्याप्त देखभाल नहीं की जा रही है, हम सार्वजनिक संसाधनों का बेहिचक उपयोग और विनाश कर रहे हैं और एक ऐसे पारिस्थितिक ऋण बना रहे हैं जिसको सबसे बढ़कर गरीबों और आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। पोप लियो 13वें द्वारा 1891 में प्रकाशित प्रेरितिक विश्व पत्र रेरुम नुआरुम की 130वीं वर्षगांठ पर मध्य पूर्वी कातिक कलीसिया के प्राधि धर्मदक्ष की न्याय एवं शांति के लिए बनी धर्मदक्ष समिति ने एक नई पहल जारी की है जिसमें पूर्व के लिए शांति दिवस पर ख्रिस्त्याग अर्पित की जाएगी। इस साल यह वर्षगांठ 27 जून को पड़ेगी। पहल का उद्देश्य है प्रार्थना की पूर्ण एकता में एक साथ आना। संत पापा फ्रांसिस द्वारा घोषित संत जोसेफ वर्ष के अवसर पर मध्य पूर्व के परिवारों को पौत्र परिवार को समर्पित किया जाएगा। इस तरह 27 जून 2021 को नाजरेत के अनंसिएशन महागिरजा घर में पूर्वाहन 10 बजे समारोही ख्रिस्ताग अर्पित किया जाएगा जिसमें पौत्र भूमि के सभी धर्मदर्श भाग लेंगे। इस अवसर पर पौत्र परिवार की तस्वीर पर आशीष प्रदान की जाएगी। नाजरेत के पौत्र परिवार की तस्वीर जो नाजरेत के संत जोसेफ के जगह की वेदी पर स्थापित है, परंपरा के अनुसार यीशु के पालक पिता संत जोसेफ का घर यहीं था। बाद में तस्वीर को तीर्थ यात्रा में लेबनान से शुरू करते हुए एवं पूर्वी देशों को पार करते हुए संत जोसेफ वर्ष के अंत में 8 दिसंबर को रोम पहुंचाया जाएगा। रोम पहुंचने के बाद पौत्र तस्वीर को पुनः पौत्र भूमि वापस किया जाएगा। यरूशलेम के प्राधि धर्मदर्श पियर 32 ने विश्वासियों को निमंत्रण देते हुए कहा, आप सभी अपनी उपस्थिति द्वारा मध्य पूर्व में ईश्वर की दया और शांति हेतु प्रार्थना में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं, और यदि संभव ना हो तो आप प्रार्थना द्वारा हमारे साथ सहभागी हो सकते हैं। गुमला धर्म प्रांत के धर्मदर्श पॉल अल्विस लकड़ा का निधन 15 जून को कोविड-19 के कारण रांची के ऑर्किड अस्पताल में हुआ। वे 65 वर्ष के थे। उनके निधन के साथ भारत की कातिक कलीसिया ने अपने 4 धर्मदर्शों को खो दिया है। उनका अंतिम संस्कार 16 जून को पूर्वाहन 10 बजे गुमला के महागिरजाघर में संपन्न किया जाएगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।